जय राधे समय माम चरण नमामीश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं मानं यशोदाभियोलुखलाद्धावमानं परामीशमप्यं ततो दुष्टम् राधा दामोदरस्तक के संबंध में बतला रहे हैं। यह अष्टक स्वयं प्रकटित स्वयं प्रकाश है। सृष्टि के आदि में मुनि सप्तव्रत मुनि नारद और शौनक ऋषि के संवाद में पद्म पुराण के अंतर्गत नारद ऋषि और शौनक आदि संवाद में शौनक आदि पूछ रहे हैं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं। उसमें सत्यव्रत मुनि एकदम शिष्य के प्रारंभ में उन्होंने इसको स्तव स्तुति को की थी। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी इस स्तव की टीका लिखी है, वो भी दिग्दर्शनी टीका है, केवल दिग्दर्शन मात्र। विशेष रूप में इसका बतलाना व्याख्या करना बहुत बहुत कठिन। इन्होंने संक्षेप में दिग का दर्शन कराया है, अर्थात बहुत संक्षेप में ये दिग्दर्शन सूत्र मात्र दिया है। इस लीला को लीलाओं का चिंतन करते थे। ये लीलाएं दो प्रकार की हैं। एक लीला है मंत्र उपासनामयी और एक है स्वारस की। ये लीला मंत्रमयी उपासना उसको कहते हैं जैसे एक हार गुथा हुआ है, उसमें हजारों फूल हैं, उसमें एक फूल को, एक कड़ी को, एक मणिका को मंत्र उपासना कहते हैं। एक जो मणि है या एक पुष्प है इसमें से, तो इसको कहेंगे मंत्र उपासना। और लीलाओं का लगातार जो चेन है, लगातार एक भी कहीं से विच्छिन्न नहीं है, पूरा माला मिल करके सब मिल करके एक हुआ, ऐसे लाखों सहस्त्रों अभिनव लीलाएं मिल करके सवेरे से शाम तक और फिर सवेरे तक, सवेरे से आरंभ किया प्रातः काल से और सब लीलाओं को पार करते हुए अंत में फिर वहीं पर उपस्थित हुए प्रातः काल लीला में। एक केवल रात में रासलीला एक रात में हुई, किंतु इस ये रासलीला मंत्रोपासनामयी नहीं है, इसमें बहुत सी लीलाएं हैं। इन लीलाओं को करने में कृष्ण को और गोपियों को ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर चार 1000 चतुर्गुण, इसमें जाने कितनी रात और कितनी दिन हो जाएगा, इतना दिन लगा। कृष्ण की आयु इस जगत में 125 वर्ष की थी और 125 से भी गुणा कर दीजिए लाख का, इतना वर्ष तक ये लीला हुई। ये लीला भी इसमें कुछ कमी रह गई, प्रातःकालीन लीला नहीं है, इसके बाद में पूर्वाह्न लीला नहीं है, मध्यान्ह लीला नहीं है, मध्याह्न वाली नहीं, अपराह्न वाली नहीं है, सायं की लीला नहीं है, इसके बाद में प्रदोष वाली लीला नहीं है, केवल नैष लीला। एक रात में नैष लीला केवल रात की लीला है। जो सोएगा उसको उठा दो तो उठा करके बेंच पर खड़ा कर दो, नैष एक लीला मात्र। अब कृष्ण का जन्म हुआ और वहां से लेकर के रास लीला तक आठ भागों में उनकी लीलाएं विभक्त कर दी गई। आठ ये प्रहर कहलाता है। आठ प्रहर की लीला को एक साथ में संयुक्त करके एक आदमी बैठ गया, शंकर जी बैठ गए और बैठ करके सवेरे से निशांत लीला से बैठे और एकदम निशांत लीला तक बैठे ही बैठे रह गए। उनको फुर्सत नहीं मिली उठने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। हमारे गोस्वामी लोग इसी को करते थे, हम लोगों के लिए ये संभवपर नहीं, संभवपर नहीं। हम लोग के हृदय में संसार की अष्टकालीय लीला चल रही है। बैठ जाएंगे हरिनाम करने के लिए तो संसारिक अष्ट प्रहर लीला आरंभ हो जाएगी। कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसलिए ये संभव है। इसलिए साधारण साधकों के लिए अधिक तो वो कर नहीं सकता। अच्छा तो मंत्रमय उपासना, एक कड़ी एक फूल लेकर के बस उसी का चिंतन करो। उसमें से दामोदर लीला एक बहुमूल्य रत्न है, इस चीज को समझो। नमामि ईश्वरं सचिदानंद रूपं लसत कुंडलम गोकुले भ्राजन। यद्यपि ये भी मंत्रमयी उपासना ठीक नहीं है, ठीक मंत्रमा किंतु है, इसमें भी कुछ लीलाओं का चयन है। मंत्रमयी उपासना उसको कहते हैं एक लीला का बस बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण हैं, दोनों आलिंगित हैं, कृष्ण के हाथों में बांसुरी है, मंद मुस्कान छेड़ रहे हैं, राधा जी उनको पान की बीड़ी दे रही हैं, जमुना जी का सुंदर उपकुल है, भौरे उसमें गुंजार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी बयार बह रही है, उसमें सुगंध से वो मतवाला हो रहा है, उसमें मयूर उस सुगंध से ही और उस दृश्य को प्राकृतिक दृश्य देकर के नृत्य कर रहे हो। कोयल कुहू कुहू कर रही है, पपीहा पपीपा पी कहाँ वो कर रहा, उसमें हिरणों के बच्चे फुदक रहे हैं, वो लोग भी कृष्ण की तरफ में चल रहे हैं, सारी प्रकृति मानो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बैठ करके ये ध्यान कर रहे हैं। ये मंत्र उपासना भी इस तरह से इस लीला को इस रूप में समझो। जो गुरुमुख से इन चीजों को नहीं सुने हैं, इन सब का अर्थ नहीं समझेंगे, तो अभी हम लोगों ने राधिका कृपा कटाक्ष नंदनाष्टकम ये जो पाठ किया, ये तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे भाव है, वो तो बिरले इस जगत में है। तभी हम लोग इसका कीर्तन करते हैं जो लोगों को लोभ कुछ हो जाए। इसलिए हम सनातन गोस्वामी जी ने कहा प्रतिदिन इसका सवेरे भोर में उठ करके इसका पाठ होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए और कीर्तन में भी इसका होना चाहिए, इन भावों को ग्रहण करना चाहिए। ये राधा दामोदर जी की भावमयी सेवा है। अर्चन तो वो है अर्चन कनिष्ठ अधिकारी का जो नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी अर्चन करने वाले कनिष्ठ ही हैं, ऐसा मत समझ लेना। रूप सनातन जी गोविंद गोपीनाथ की सेवा की, हमारे गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन की सेवा की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गोकुलानंद की सेवा की, श्यामानंद प्रभु जी ने उनकी सेवा की, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर की सेवा की, तो ये सब लोग कनिष्ठ मार्गीय अर्चक नहीं है। ये लोग ऊपर से ऐसा दिखता है किंतु भीतर से वो अत्यंत भावमयी सेवा के चूड़ांत स्थिति पर वो लोग हैं। यदि संसारी कामनाओं को छोड़ करके दिवारात्र गुरु की सेवा करेंगे, इन चीजों को जैसे अभी हम लोग पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चल रहे हैं कार्तिक महीने में, इस तरह से यदि ठीक से चलें तो ये सब हृदय में स्फूर्ति हो, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। विशेष करके एक महीने का इसलिए किया गया, याद नहीं रहने पर भी पुस्तक देख करके भी यदि ये पाठ करे तो याद हो जाएगा, तो सारा बत्सर इसका कीर्तन करता रहेगा, इसलिए इस सब की व्यवस्था की गई। गुरु जी कहते थे ये घड़ी में हम लोग 4 बार दम देते हैं, इस घड़ी में दिन रात में 1 बार दम दिया जाता है ना, इन घड़ियों में। आजकल तो हम सच्चिदानंद रूप में, सच्चिदानंद जो ईश्वर हैं, समस्त केवल ईश्वर नहीं, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, सबके आदि उनका कोई आदि नहीं, वो स्वयं अनादि और अखिल रसामृत सिंधु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, षडैश्वर्यशाली हैं, बड़े कृपा वत्सल हैं और उज्ज्वल लीलमणि में कथित धरिल लील इत्यादि जो ललित नायक इत्यादि हैं, समस्त गुण उनमें परिपूर्ण रूप से हैं। भक्ति स्वामी सिंधु में 60 जो गुण हैं उनमें भी परिपूर्णतम वो जो हैं, ऐसे ये कृष्ण हैं गोकुल में खेलने वाले, घर घर में दधी दूध की चोरी करने वाले, ये सच्चिदानंद हैं, साधारण नहीं हैं, इसलिए उनको सतव्रत मुनि जी प्रणाम करें, नमामि ईश्वरम, उनको ईश्वर मान करके प्रणाम करते हैं। इसलिए इसमें मालूम होता है जो इन्होंने दास रस से आरंभ किया, दास रस, यदि दास रस न रहे तो किसी को प्रणाम नहीं करेगा। सखा लोग परस्पर कृष्ण को मधुमंगल श्रीदाम आएंगे ना तो उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अरे तरे करते हुए अभी तक सो रहा है और उस करके कूद करके उसके पलंग पर चढ़ जाएंगे और उसको अंक में लेकर के उठा लेंगे, कोई प्रणाम नहीं। यशोदा मैया तो जरूर प्रणाम करती होगी ना कृष्ण को, आनंद बाबा वो नहीं, उठो लाल आंख को खोलो पानी लाई मुख धोलो, अरे देखो भी क्या देखो पूर्णमासी जी आ गई हैं, तुम्हारे आशीर्वाद, तुमको आशीर्वाद है और तुम अभी सो रहा है और कृष्ण करके जितने उठाती हैं उतने ही, और ये कौन है, कौन नारायण बलदेव प्रभु इत्यादि सब जितने सर्वेश्वरेश्वर हैं, षडैश्वर्यशाली भगवत तत्व हैं, इनके भी मूल हैं जो गोकुल में अभी सो रहे हैं और उनको यशोदा जी पूर्णिमा जी के साथ में आकर मुखरा को साथ लेकर के, अंबिका और सब दूसरों को साथ लेकर के बलैया देने के लिए सोने के थाल में कपूर की बाती लेकर के वहां पर खड़ी है, उनको उठा रहे। इसके पहले जो रात में बच्चों के साथ में जाकर के घरों घरों में नवनीत चुराया, मक्खन चुराया, किसी ने पकड़ लिया, कैसी कैसी सब लीलाएं हैं। अबोध एकदम बच्चे जैसे, सरल जैसे बच्चे, ये गोकुल में ये कौन है, यही है नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद। इसलिए सखा लोग जो यशोदा मैया ये प्रणाम नहीं करती तो छोटी छोटी ग्वारियां जो गोपियां हैं वो तो जरूर प्रणाम करती होंगी, वो अर्चन जरूर करती हैं, नैनोर लाते। हम समझते हैं कि गुरु जी रहते तो कहते जे नहीं, कृष्ण ही अपने नैनों से उनकी आरती उतारते हैं, इसलिए प्रणाम का हुआ नहीं, किंतु तो भी ये सत्यव्रत मुनि अधिकार में अभी दास है इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद। कैसे हैं, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, गोकुले गोकुले भ्राजमानम लसत कुंडलम, गोकुल में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। भ्राजमानम माने क्या? भ्राजति, अत्यंत सुशोभित। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? कृष्णचंद्र जी अपने पलंग से उठे और उठ करके यशोदा मैया की यहां गए। यशोदा मैया दूध मंथने में व्यस्त है, कृष्ण का स्मरण नहीं। और गोविंद दामो धर्माधवेती कर रही। इतने में कृष्ण चंद्र पलंग से उतर कर, कैसे उतरे? उतरने की शक्ति ने पेट के बल में बड़ी मुश्किल से ऊहा करते हुए रोते हुए उतरे। आंखों में आंसू नहीं, तभी मैया मैया जोर से कर रहे करके उतर रहे हैं। तभी मैया नहीं सुन रही है, तो धीरे धीरे अभी निद की खुमारी है। खुमारी मैंने की बंगला से आके खुमारी आवे, खुमारी है। अभी लड़खड़ा करके चल रहे हैं, अभी चलना भी नहीं आया। और सुंदर कैसे वस्त्र सब सजे हैं? कुछ नहीं, नंग धड़ंग बस, यदि करधनी एक है भैया और कुछ नहीं। कानों में कुंडल है। और वहां से गोकुल में वहां पर आए और तब यशोदा मैया जी ने देखा, गोद में बिठाया। और इसके बाद में दधि दूध को उतारने के लिए गई और अंत में इन्होंने उसको दंड देना चाहा और यशोदा मैया आगे पीछे पीछे भग रही और कृष्णचंद्र जी आगे आगे भग रहे हैं, ये पीछे सब आएगा। उस समय जब चल रहे हैं कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मैया की तरफ में देखते हैं कभी, और मैया हाथ में एक छोटी सा बेंत की छड़ी लिए हुए और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। स्थूल शरीर कृष्ण, छोटे पतले बड़े गठिला शरीर भाग रहे हैं, पीछे से ये दौड़ रही हैं, कुंडल झलक रहे हैं। झलक माने क्या रहे? कपलों का बाग पुनः पुनः चुंबन करते हैं। इन समस्त आभूषणों में यहाँ पर सत्यव्रत मुनि मुग्ध हो जाते हैं। ये कुंडलों को की शोभा देख करके, कुंडलों का सौभाग्य देख करके, ये कृष्ण के गंडस्थल को।
हरे कृष्णा कृष्णा
यशोदा भी ओलू खला धाओ मानो। यशोदा के भय से ये पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान आज डर के मारे भगे, ओखल से लंफ दिया। यशोदा भी यह यशोदा के डर से उलुखलात उलुखल से धावमानम दौड़े, खुद करके भगे। यशोदा मैया हाथ में लठिया लेकर के इनके पीछे पीछे दौड़ी। पर्यटक कृष्ण ने मैया मुझे मार मत मार, मैया मुझे मत मार ना? और भगे चले जा रहे। यशोदा मैया क्या तुमको आज अच्छी शिक्षा देंगे? परामृष्ट अत्यंत अत्यंत माने यशोदा जी कृष्ण से भी अधिक दौड़ी। जितना कृष्ण दौड़ रहे हैं उससे कम दौड़ेंगी तो बांध पकड़ नहीं सकती, उतना बराबर बराबर भी दौड़ेंगी। अत्यंत कृष्ण से डबल यदि दौड़ेंगी तब तो पकड़ेंगी, इसलिए भाई जोर से दौड़ी। तो द्रुत्य गोप्या परामृष्ट, परा माने पीछे, अमृष्ट माने पीछे से जाकर के पकड़ लिया। ऐसे सचिदानंद गोकुलेंद्र कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, उनको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। आज यहीं तक रहे, इसकी विशेष व्याख्या हम लोग कल
करेंगे। मंदिर सुसेन्दीवरम जड्डंजागुटरोचि संविदधतम पट्टंबरस्य प्रिय बृंदारण्य निवासिनम हृदय दशत कामाभिरामोदरम राधा स्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेन दामोदरम
सचिदानंद।
कुंदरूपम लसत कुंदलम गोकुल भ्राजमान जसोदा भियोलु खला धाम मानम परामृष्टमात्यंत तो दुर्जगोप्य।
कल हम लोगों ने साधारण रूप में इसका अनुवाद हम लोगों ने किया, अब सत्यव्रत मुनि दास भक्ति से आरंभ करते हुए अपने इष्ट देव का नमन करते हैं। कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप है। तभी लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, गोकुल में अत्यंत मनोहर रूप से सुशोभित हो रहे हैं, कुंडल झलक रहे हैं। यशोदा मैया के भय से ओखल से कूद कर भागे और यशोदा मैया ने उनसे भी अधिक तीव्र गति से दौड़कर और उनके पीछे से पकड़ लिया। इसके पृष्ठभूमि में श्रीमद् भागवत की एक कथा है जिसमें दीपावली का दिन था। उस दिन स्वयं यशोदा जी ने दूध निकाला, पद्मगंधा और कालिंदी इत्यादि गायों का, जो कि अधिक चरने के लिए बहुत दूर नहीं जाती थी, काफी दूध देने वाली थी, अपने हाथों से निकाला, अपने हाथों से औंट आया, अपने हाथों से ही उसमें क्या देते हैं, जाम देते हैं। और दूसरे दिन सवेरे में दधि मंथन करने के लिए स्वयं बैठी, इसमें भी एक पीछे कहानी है, कथा है। क्यों? जिनके घरों में हजारों लाखों दासियां हैं, रोहिणी मैया हैं और हजारों गोपियां हैं, आज वो खुद दूध मंथन करने के लिए बैठी क्यों? कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं, पहले घर में आबद्ध रहते थे, अब घुटनों पर चलने लगे हैं और ऐसी दुरंत लीलाएं करते हैं जो यशोदा मैया मुख में अंगुल दे करके काटने लगती है आश्चर्य। कभी कोई सर्प बैठा है उसको पकड़ लेते, कभी बड़े बड़े भैंसे सिंह वाले और उनकी सिंह पर से हिलाते, कभी बड़े बड़े सांड उनकी भी सिंह पकड़ लेते, मुख पकड़ लेते। एक समय बलदेव जी के साथ में खेलते खेलते घर से निकल आए, यशोदा मैया बड़ी तंग आ गई। दिन रात जब छोटा था तब तो इतनी चौकसी नहीं करनी पड़ती थी, अब चौकसी करनी पड़ती है, कभी तलवार पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है। अभी कल ही बलदेव जी के साथ में खेलते खेलते किसी प्रकार से वो देहली को पार कर गया। जैसा मैंने देख ली, कहां गया दोनों, तो करके देखी क्या, ये दोनों बबल के कांट या पेड़ के कांट सब रखे गए हैं घेरौंदा के लिए, उसके अंदर में कोई एक फूल खिला था, फूल देख करके ये लुप्त हो गया, अब उसको तोड़ना ही चाहिए। इसलिए बड़ी मुश्किल से कांटों को हटा करके ये दोनों किसी प्रकार से उसके भीतर में घुस गए। जब घुस के फूल को लिया, इतने में जो कांटा को ऊपर उठाया था वो नीचे, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, कांटे भी चुभने लगे, अब तो वहीं से जोर करके मैया मैया दोनों चिल्लाए। यशोदा जी खोजते खोजते देखा, अरे ये तो कांटे में फंसे हैं। क्रोध भी आया और कहा जी ये देखो तू सन्न रह गई। बड़ी मुश्किल से लोगों को बुला करके कांटे को हटा करके किसी प्रकार से उनको बचा। अब एक दिन जन्म दिवस था, उसी समय में जसोदा मैया ने कहा ये जरा बछड़ा हुआ है ना उसको ले आ। तो बछड़े के लेने के लिए गया, बछड़ा आ नहीं रहा, उसको गले से पकड़ लिया है और बछड़ा भी कैसा बड़ा सुंदर, अभी बलिष्ठ, अभी थोड़े दिन का है बछड़ा, अभी फुदकने वाला सफेद बछड़ा पकड़ लिया और खींच रहे हैं, वो चारों टांग आगे लगा दिया, वो जाएगा नहीं और ये उसको पकड़ करके खींच रहे हैं, खींचते धींगा मस्ती करते करते किसी प्रकार से दहली तक ले आए। घर के अंदर में जो ही घुसा देखा जैसे मक्खन की हंडिया लटक रही है, अब बछड़े को भी नहीं छोड़ सकते और उधर हंडिया लटकी हुई, कुछ मुख से पानी आ गया और सोचा जैसे अब कैसे इसको लिया जाए, तो बछड़े को वहीं पर खड़ा कर दिया, ओखल तो थी नहीं वहां, उसी के ऊपर में सोचा जी इसके ऊपर में देख करके और उसको पकड़। जो ही उसके ऊपर में थोड़ा सा हाथ दिया, इतने में ऊपर में तो वो पकड़ करके किसी प्रकार से झूल गए और इतने में बछड़ा वहां से भाग गया। अब झूल करके मैया मैया चिल्लाने लगे, इतने में मैया आई, कहिए अभी हम आज तुमको छुड़ू मिले, तुम देखेंगे कब तक लटकता है, रोज लटकता है तो लटकने। अब वो देख करके और चिल्लाने लगे, कुछ देर में गाल में एक चपत लगाया और फिर उसको पकड़ करके नीचे उतारा। अब थोड़े दिनों के बाद में घरों में घुस करके मक्खन इत्यादि चोरी करने लगे, किसी के घर में घुस जाते उसके बच्चों के साथ में और घुस करके उसी के बेटे को कहते तुम जा करके भीतर से पीछे की कबाड़ खोल दो, और पीछे से उसके ही उसी के लड़के से किवाड़ खुलवा करके भीतर में घुस जाते, कह देते जी तुम उसका बछड़ा खोल दो, बस अपना बछड़ा वो खुद खोल देता, मैया से जा करके कहते मैया बछड़ा दूध पी रहा है, मैया उधर में जाती इधर में घर में घुस गए, दही मक्खन जो खाया बंदरों को लुटाया। प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता। एक दिन किसी गोपी ने उनको पकड़ लिए, पकड़ कर यही पकड़ी कहा कि अरे मैया ये तेरा घर, ये तो मैंने अपना घर समझ करके इसमें घुसा था। गोपी हंसने लगी, हाथ से छू करके चले गए। एक दिन किसी गोपी ने पकड़ लिया, रंगे हाथ उसमें मक्खन में हाथ दिया और इतने में पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में मैया छोड़ दे मुझे, मैया छोड़ दे करने लगे, आज छोड़ेंगी नहीं, किस लिए हाथ लगाया, तो मैंने तो मक्खन नहीं लिया तो कैसे हाथ लगाया, तो हाथ इसलिए लगाया हमारा बछड़ा इसमें गिर गया है, बछड़ा इसमें कैसे गिरेगा, तो मार्बल उसमें हाथ निकाल करके बाबा ने हमको खेलने के लिए दिया था, ये उछल करके उसी में कूद गया, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारा मक्खन फोड़े खा रहा। नाना प्रकार की इसी प्रकार से लीलाएं करते गोपियां भी, इसी प्रकार से उनको प्रतिदिन चाहते कि हमारे घर में आए। सोचा जी जसोदा जी का यह सौभाग्य नहीं है कीड़ा देखने का, छल बल का से उनको ये कथाएं सुनाई, इसलिए जसोदा जी के पास में जाकर के उलाहने के बहाने उनसे कहने लगे तेरा लेवा बड़ा झीठा हो गया है, अभी से चोरी करता है, हम लोगों के घरों में धस जाता है और वहां से मक्खन इत्यादि चोरी करता है, इनको विश्वास नहीं होता, कभी हमारा लाला तभी सो रहा है अभी तो उठा ही नहीं, चोरी कैसे किया। एक दिन तो सवेरे के समय में भोर में छखाओं को लेकर के और किसी के घर में घुस गए, वहां पर एक गोपी ने उनको पकड़ लिया और कहा जसोदा का विश्वास नहीं होता चलो लेकर के दिखाएं, जसोदा जी को पकड़ करके उस बच्चे को और लेकर के चले आए। जसोदा जी से कहे देखो अपने लाला की करतूत, सवेरे में जाता है तुम विश्वास नहीं करते, अरे कहाँ है मेरा लाला, मेरा लाला तो वहां पर सो रहा है, तो देखो तो ये इसको, तो जो मुंह का ये उठाया कपड़ा तुम्हें देखा जैसे उसी का लड़का है जिसको पकड़ करके आई। तरह तरह की लीलाएं करते यशोदा मैया भी तंग आ गई और उन्होंने सोचा हमारे घर का मक्खन खट्टा होता है, क्योंकि दासियां बनाती हैं, इसलिए आज मैं खुद ही दूध दूंगी, खुद ही मक्खन बनाऊंगी और तब कृष्ण को खिलाऊंगी। मैं तो ये मीठा होने के बदले उन लोगों के घरों में खाता है। इस तरह से आज यशोदा मैया बैठ रही हैं। कैसी सुंदरी हैं यशोदा जी, प्रौढ़ होने पर, अभी प्रौढ़ा हैं, प्रौढ़ा मैंने 40-50 वर्ष की हो गई हैं, और अभी कोई बच्चा नहीं था, यही पहला बच्चा हुआ। सुंदरता की खान है, जिनके कृष्ण ही इतने सुंदर हैं उसकी मैया कितनी सुंदरी होगी, श्यामल वर्ण की, कोई कोई कहते हैं गौर वर्ण की, किंतु श्यामल वर्ण की ही गोस्वामी ने लिखा। सुंदर रेशमि का पतला सूक्ष्म वसन उनके शरीर पर है, मानो उनके सब अंग का सौंदर्य उस पतले कपड़े से, सूक्ष्म वस्त्र से झांक रहा हो। दधि मंथन कर रही हैं और उसके परिश्रम से अंचल गिर गया, कपड़े भी हट गए और खूब जोर से घर घर कर रही, एक किसी खंभे में लगा दिया और उसकी रस्सी, हाथ से नहीं रस्सी, आप लोग जब जाएंगे नंदगांव में तो देखेंगे कि कितनी बड़ी हड़िया है, उसमें हम समझते हैं कि 10 मन 20 मन भी दूध उसमें दही आ जाएगी, दिखलाएंगे हम लोग। पीछे जो बज रहा है ये घर्षण से, ये मानो मृदंग का ताल हो, और उनकी सोने की चूड़ियां परस्पर लग करके झनझन जो कर रही हैं, मानो ये सुंदर मधुर वाला करताल है। और उनका स्वर क्या, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, उदुखलेशं तंदुलानं संघंटयंतो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्या जनितानुरागा, गोविंद दामो। इस तरह से कृष्ण लीला का गायन कर रही है, तन्मय हो रही, इतना सुंदर स्वर, और ये सब जो मृदंग और करताल बज रहे हैं, तन्मय होकर के गा रही है। कृष्ण वहां से उठे भोर में, 4 बजे भोर की बात, भूखे हैं, मैया को खोजा नहीं मिली, पेट के बल से वहां से उतरे और उतर करके यशोदा मैया के यहाँ चले आ रहे हैं, और क्रमशः उनके रोने का स्वर बढ़ता चला जा रहा है। निकट में आए खूब जोर शोर तो भी नहीं, यशोदा मैया को नहीं सुनाई पड़ा, निकट में आकर के उनकी दधि मंथनी को पकड़ लिया और एक हाथ से उनके सिर के केस को पकड़ लिया। यशोदा माई का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा, घूम करके देखा, ये तो कन्हैया गोपाल, नरस से उनका हृदय उमड़ पड़ा। कृष्ण विषय है प्रेम के, आश्रय है यशोदा मैया, संबंध क्या है, बेटे का बात्सल्य भाव, कृष्ण में यह बात्सल्य भाव नहीं, यह बात्सल्य भाव किसमें है, आश्रय यशोदा में, और कृष्ण उसके विषय विग्रह हैं। हाँ, कृष्ण में कभी कभी बात्सल्य भाव आता है, द्वारका में कभी भी अपने भक्तों पर भी भक्त बात्सल्य आता है, किंतु ऐसा बात्सल्य ब्रजवाला जो बात्सल्य है यशोदा मैया में, नंद बाबा में, वो कभी उनको नहीं आता, थोड़ा सा अंश कभी कभी उनमें प्रकाश होता है। स्थाई भाव यहां पर बात्सल्य भाव, इसके ऊपर में विभाव, विभाव माने ये साधक है कौन, यशोदा जी को समझो, जो उनका अनुगमन करके रागानुगा भजन में प्रवेश करना चाहता है साधक, भाव उतना नहीं, अधिक तरफ में इन्हीं के भाव में डूब करके उनकी सेवा करने की चेष्टा करेगा। यशोदा मैया के अंदर में वात्सल्य भाव है, स्थाई भाव है। स्थाई भाव होने पर भी उसमें तरंगे नहीं आएंगी। तरंगे कब आएंगी? जब उनमें चार प्रकार के रस की जो सामग्रियां हैं उसमें मिलित होगी। आलंबन दो प्रकार का, अक्षय और विष्णु। कृष्ण है बेटे, यशोदा है मैया। बेटे को देखा, कैसा देखा? नंग धड़ंग छोटा सा बच्चा रो रहा है दूध के लिए, स्तनपान करने के लिए मचल रहा है, और लठें अभी सोकर के आया है ना, कैसे हो इधर उधर बिखरी हुई, मानो भौरे उस पर गुंजार कर रहे हैं। साथ साथ में कुंडल, जब लंबा लंबा रोता है तो ये कुंडल ललक रहा है, और क्या रो रहा है दूध के लिए, ये हो गया उद्दीपन। और ये उनका मुखारविंद देख करके मुग्ध हो गई, हृदय द्रवित हो गया। तो ये भाव, स्थाई भाव में विभाव, इसके बाद में उद्दीपन। उद्दीपन हुआ क्या? कृष्ण का मुखारविंद, उनके लटें जो आ रही हैं, कुंडल दलक रहे हैं, नंगा धड़ंगा भूखा है, ये सब उद्दीपन हुए। उद्दीपन के बाद में अनुभव देख करके चित्त में, उनके हृदय में लहरें आने लगी। क्या लहरें आने लगी? आंखों में आंसू आ गए प्रेम के, रोमांच हो गया, कंप, अश्रु, पुलक, ये सब जो है अनुभव। अनुभव में भी एक अष्टसात्विक भाव विशेष होता है, ये अनुभव की अंदर है। ये आठ प्रधान है, किंतु और भी बहुत से भाव अनुभव हैं। चित्त के हृदयों का जो अवबोधक भाव होते हैं बतलाने वाले, वे अष्टसात्विक भाव है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से भाव, और एक व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी मैंने संचारी, भी विशेष रूप से स्थाई भाव के ओर जाने वाले, तरंगों के साथ में स्थाई भाव को उठाने वाले, तरंगायित करने वाले, इनको कहते हैं संचारी भाव, ने? संचरण करने वाले। कहां? स्थाई भाव रूपी समुद्र में। किस रूप में? लहरों के रूप में, और फिर उसी में मिल जाते हैं। उसको स्थाई भाव वाली जड़ सोता है, उनके भावों में, हृदय में उमंग बढ़ा करके, और कृष्ण रूपी प्रेम समुद्र में उनको तरंगायित कर, कभी डुबाती हैं कभी ये करती हैं। इस तरह से अनुभव और हो गया अनुभव विभाव इत्यादि। इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में ले लिया, और हाथों से उनके केशों को उलझे हुए को सुलझाने लग गई, और आंख से आंसू के बुंदे भी आने लगी, और तन से इतना दूध निकला, अपने आप कृष्ण को चूसना नहीं पड़ रहा, अपने आप निकलने लगा। इतने में यशोदा मैया ने देखा, जब कृष्ण तो परिचित नहीं हुआ, पार्टी में एक चूल्ही पर रखा था दूध, वो उफन रहा है, मानो दूध ये कह रहा है, मैया तो दूध मैं, मुझे सेवा करने का समय नहीं मिलेगा, तुम्हारे स्तन में इतना दूध है, समुद्र का पानी सूख सकता है, खत्म हो सकता है, तुम्हारे स्तन का दूध नहीं खत्म होगा। और कृष्ण का उदर इतना बड़ा है जो विश्व ब्रह्मांड में समा सकता है, किंतु ये भरेगा नहीं, तो कृष्ण का पेट भरेगा नहीं, तुम्हारा दूध समाप्त नहीं होगा, इसलिए इनका पीना भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, इसलिए आग में जल मरना ही अच्छा। साधकों के लिए ऐसा ही होना चाहिए, यदि कृष्ण की गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं तो की काज, हाँ उस
जब साधक के हृदय में ऐसे भाव आएंगे तो सचमुच में ये शुद्ध जो खुदा मैया बड़ी दयालु है, उन्होंने कृष्ण को झट रख दिया, और रख करके जली गई दूध की रक्षा करने के लिए कृष्ण उतना को पकड़ लिया उसका, 7000 बल वाली थी किंतु कृष्ण को छुड़ा नहीं सकी, छोड़ो किंतु उन्होंने छोड़ा नहीं। अनायास ही रूप में वो केवल उसका दूसरों को खींच लिया, प्राण भी खींच लिया किंतु छोड़ा नहीं। जब वो गिर से यदि उसके पेट पर यशोदा मैया साधारण सी गोपी दृष्टि है, कृष्ण ने जब वो हटाने लगी अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और पैरों से भी पकड़ लिया फोकस के और मुख के जोर से पकड़ लिया। सोचा जब वो सर्वशक्तिमान है उनकी शक्ति भी जान गई और चार चेष्टा की यशोदा मैया अध्यक्ष उनको पकड़ करके अपने बैठ गया और एनमी से उनको बैठा। ऐसे सर्वशक्तिमान कृष्ण भी वहां पर परास्त हुए बातल दराज के सामने। कृष्ण रोने लगे विवश होकर, क्या मैया चली गई, दूसरे को हटा करके फिर आई। अभी तुमको गर्म करके दूध पिलाऊंगी और इसी का मक्खन बनेगा वो उसको खिलाऊंगी, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव या जिसका हम अनुगमन करते हैं वो हमारे ऊपर में ऐसे ही कृपा करते हैं। कहता है भक्त मुझे भक्ति नहीं, सचमुच में जब विचार करेंगे देखेंगे कहां भक्ति, कहां शुद्ध तत्व, कहां निष्ठा और कहां ये प्रेम। बंद गोभी के एक ही पत्ते के समान में निकालते चले जाओ, देखते 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 जो कुछ भक्ति नहीं, कहां रविदास ठाकुर का देखो, कहां उसको स्वामी सनातन को स्वामी की भक्ति, साधुओं की भक्ति देखो और कहां हम। इसे भक्त निराश हो जाता है। प्रभुपाद से एक आदमी ने पूछा कृष्ण का दर्शन कब होगा, हम तो देखते हैं कि भक्ति कुछ नहीं है, तो तुम हरि नाम ग्रहण करता है कहा, हरिनाम ग्रहण करना ही प्रबलता दर्शन है, परम विजय से जो हरिनाम से कीर्तन करता है उसका प्रबल दर्शन उसका हो गया, भगवान के दर्शन करने के लिए वो इधर अधिक नहीं देता है। इस प्रकार से गुरु संत बना देते हैं, जिस प्रकार से जीव गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी को उसको स्वामी ने पाला पोसा, उनको सांत्वना देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का है रूप गोस्वामी के गिरह में, और मैं गोविंद दो वर्तन के साथ में नहीं रहना चाहता, ये हमें अजगर के समान रखते हैं। राधा कुंड भूख लगता है, नहीं नहीं रहना, ये शरीर से मुझे जरूरत नहीं, इन प्राणों की जरूरत नहीं। इस तरह से गिरह में आतुर हो जाता है, इसलिए भक्त देखता है कि हमारे अंदर भक्ति, किंतु गुरु और वैष्णव उनको संत नाम ले करके रखते हैं। इस प्रकार से यशोदा जी ने उसको पानी का छीटा देकर के संत बना दिया, नहीं नहीं तुम घबराओ मत, कृष्ण की स्वामी ने तुम्हें नियुक्त कर दिया, सचमुच में बात भी ऐसी है, हम अपनी चेष्टा से नहीं कर सकते, गुरु और वैष्णव जब भी हम पर कृपा करेंगे तभी उनको हम समझ सकते हैं और उनको पा सकते हैं। वहां से लौकी बेटा जो है नहीं और पतली दही भर गई है चारों तरफ में, कहां गया वो इतने में यशोदा माँ अभी लौटने के पहले ही वो कुछ बिगड़ करके दांतों से होठों को चबाता हुआ क्रोध के मारे वो थपड़ा है और एक खिला कुछ लोहा लेकर और ऊपर में मरने की चेष्टा की नहीं छूटा, उसको हिला करके गिराने की चेष्टा की नहीं गिरा, बस नीचे से पतला होता है उसे मैं छक्का मारा और मारने से दूर वो दही पतली उसके खेत से गिरी। जब वो गिरने लगी तो उसको बड़ा आनंद, वहां कैसे निकल रही है। थोड़ी देर के बाद में देखा जब होता है कि मैया आकर के मारेगी, धीरे 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 घर में घुसिया जाकर मक्खन था, ओखल को उड़ा करके उस पर चढ़ गया और खाने लगा। जब थोड़ा माँ ने देखा कि कहां गया, देरी नहीं लगी तो समझ गई, उन्होंने देखा कि पैर के छाप लगे हुए हैं, चोर जितना भी चेष्टा करे कुछ न कुछ क्यू रख जाता है जिससे कि उसको पता लग जाता है। जो सोदा मैया भूल रही और ये बचने की चेष्टा करता है, पैरों की छाप देकर के घर के अंदर में गया। गई यशोदा मैया बड़े बिल्ली की तरफ में धीरे धीरे भीतर में प्रवेश। यही गई बहुत चतुर है, वहां पर कौओं को खिलाया है, बंदरों को खिला रहा है और कभी कभी अपने लग सखा वहां पर अभी नहीं। यही यशोदा दूती देखा जो कौए धीरे 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 उड़ने लगे साथियों और बंदर सब सरकने लगे। कृष्ण ने देखा जो क्यों पीछे जमीन देखा, देखा जो मैया लड़किया लेकर के अब पकड़ने वाली बस समय नहीं था। जब तू गए और पीछे के रास्ते से वहां पर राजमार्ग था, राजचंद ने लोग आते जाए। कृष्ण ने सोचा कि आज आदमी आएंगे लज्जा के मारे मैया रास्ते पर नहीं निकलेंगे। कृष्ण ने यशोदा ने देखा आज कभी वो चार करने के लिए चले गए हैं, दीपावली में व्यस्त थे इसलिए कोई नहीं पीछे। कृष्ण जितना दौड़ते हैं उसके भी अभी दौड़े थे, उसके जितने फूल थे वो सब धीरे धीरे गए। मानो फूल का रहे मैया घबराओ अकेले नहीं, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, उसको अभी पकड़ेंगे। इतने यशोदा मैया ने लड़कियां उठाई और ऐसे कहा देखो अभी बात कृष्ण ने मैया बुझेगा तो तुम चोरी क्यों किया। मैया हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, तुम्हारे ही वंश में कोई चोर होगा, हमारे वंश में कोई चोर नहीं तो तुमने चुराया नहीं, इतना भी हमारे वंश में चोर है, हमारे पिता के घर में तुम्हारे घर में नहीं है। अच्छा क्यों तुमने खाया जो चोरी किया, मैंने चोरी नहीं, ये बड़े भांड को किसने तोड़ा दर्जी भांड तो मैंने नहीं तोड़ा। कैसे तू सर, अरे तुम्हारे सालों में इतने मोटे मोटे बगुले हैं जो उधर जा रहे उसी तो वो ये पौधा लग गया और वो छूट गया, तुम्हें पता नहीं तुम सोच चलिए। यशोदा की कभी हंसी नहीं है, क्रोध भी हो रहा है, इतना झूठा मरता इस तरह से ये बात चल है। ऐसा रामचंद्र जी की लीला में नहीं हुआ, वामन जी के लीला में ऐसा हुआ होगा, किसी भी लीला में ऐसा। इसलिए कृष्ण की लीला सबसे चक्रवर्ती है।